गेस्ट हाउस रोशनी और शोर शराबी से भरा हुआ था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। स्टेज पर जुबैदा बेगम अपने बेटे अरमान और बेटी माहिरा के साथ खड़ी थीं। तभी सीढ़ियों से रिदा ऊपर आ रही थी। उसका पैर हल्का सा फिसला तो माहिरा तुरंत आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। संभल कर, माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे स्टेज तक ले आई। भीड़ से थोड़ा हटकर फरीद खान अपनी बेगम रेहाना के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीमे लेकिन गंभीर लहजे में पूछा। रेहाना ने हल्की सी नज़र घुमाई और बोली, क्या कर रही हो? देख रही हूँ, तुम्हारी भतीजी ने फैमिली गैदरिंग की प्राइवेसी की ऐसी की तैसी कर दी है। फरीद खान चौंकिया, ये तुम क्या कह रही हो? रेहाना के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। सिर्फ गेस्ट हाउस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कैसे कैसे लोगों को बुला लिया। जो फंक्शन सिर्फ घरवालों के बीच होना चाहिए था उसे तमाशा बना दिया। फरीद खान ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है, अब ये सब छोड़ो, तुम जुबैदा के पास जाओ। इस वक्त तुम्हारा वहां होना जरूरी है, आज अरमान की सगाई है। रेहाना की आंखों में कसक उतर आई। वो धीमे लेकिन चुपते लहजे में बोली, अरमान घर का बच्चा तब तक था जब तक नासिर था। उसके जाने के बाद देखा है ना कितना बदल गया है। वो एक पल रुकी फिर बोली, और जुबैदा, वो भी अब पहले जैसी नहीं रही। अब हम उसके नहीं रहे, उसका बेटा, उसकी बेटी और उसकी होने वाली बहू ही उसकी दुनिया है। कैसी बातें कर रही हो? फरीद खान ने उसे समझाने की कोशिश की, फिर खुद को संभालते हुए बोला, चलो ये सब कहने का वक्त नहीं है। वो आगे बढ़ गया। रेहाना बेटम ने एक आखिरी बार भीड़ की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी उसके पीछे चल दी। स्टेज पर अब अरमान बैठ चुका था। उसके चेहरे पर खुशी थी लेकिन आंखों में जैसे कोई अनकहा सा राज छिपा हुआ था। पास ही आफताब अपनी बहन के साथ खड़ा था, सारे इंतजाम संभालते हुए। लेकिन इस खुशियों भरे माहौल में भी एक कमी साफ महसूस हो रही थी। रेहान और सादिया आज वहां मौजूद नहीं थे। उनकी गैरहाजिरी जैसे इस पूरे जश्न पर एक हल्की सी उदासी की परत छोड़ रही थी। फैजान को जैसे ही रेहान की कॉल मिली उसके चेहरे का रंग बदल गया। बात खत्म होते ही उसने एक पल भी जाया नहीं किया, वो तुरंत मसूरी से निकल पड़ा। उसे हर हाल में इकबाल को सावधान करना था क्योंकि अब रेहान उसके पीछे पड़ चुका था। रास्ते भर वो इकबाल को फोन करता रहा लेकिन हर बार एक ही जवाब, नंबर उपलब्ध नहीं है। उसे क्या पता था, नूर पहले ही इकबाल का फोन ब्लॉक कर चुकी थी। उधर खलील भी वापस आ चुका था। सिद्धपुर पहुंचते ही वो सीधे इकबाल के घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया सुल्ताना बेगम ने दरवाजा खोला। खलील बिना वक्त गंवाए अंदर झांकते हुए बोला, कहाँ है वो? सुल्ताना बेगम एक पल को चौंकी लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। किसकी बात कर रही हो? इस वक्त हालात संभालना उसके लिए बेहद जरूरी था। उसने बात को मोड़ते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, इतनी रात को मैं किसे कहती, जरा बाजार से दूध लेकर आओ। खलील ने भौंयें से कोड़ते हुए कहा, दूध? मगर इकबाल चाचा कहाँ हैं? अरे तुम्हारे सामने ही तो गए थे शहर, सुल्ताना बेगम ने बिल्कुल सामान्य बनने की कोशिश की। शहर? किस लिए? खलील की आवाज़ में शक साफ था। तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे अस्पताल लेकर गए हैं। खलील थोड़ा रुक गया, कौन बहन? सुल्ताना बेगम ने एक पल को नजरें झुका ली फिर बोली, नूर, उसी को दिखाने के लिए शहर गए हैं। इतना सब छुपाकर क्यों गए हैं वो? खलील ने शक भरी नजरों से पूछा। सुल्ताना बेगम ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया, लड़की का मामला है, अगर किसी को पता चल गया कि वो बीमार है तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, माँ बाप को बहुत कुछ देखना पड़ता है। फिर उसने खलील की तरफ देखते हुए सख्ती से कहा, तुम भी किसी को मत बताना कि उसे अस्पताल दिखाने के लिए लेकर गए हैं, वरना उसका रिश्ता कैसे होगा? अगर कोई पूछे तो यही कहना किसी रिश्तेदारी में गए हैं। खलील अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। कौन से अस्पताल में गए हैं? उसने फिर पूछा। सुल्ताना बेगम ने झुंझलाहट छुपाते हुए कहा, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे क्या पता, शहर के बारे में मुझे थोड़ी ना सब मालूम है। फिर उसने बात खत्म करने के अंदाज में कहा, बस तुम किसी को कुछ मत बताना, वरना बच्ची का रिश्ता नहीं होगा। अंदर ही अंदर वो समझ चुकी थी, ये आदमी जितना खतरनाक दिखता है उतना समझदार नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी राहत है। खलील ने एक बार फिर उसे गौर से देखा, तुम्हें फोन तो आया होगा ना उनका, कुछ तो बताया होगा? वो हर हाल में जानकारी निकालना चाहता था। रेहाना ने तुरंत बात घुमा दी, अच्छा हुआ याद दिलाया, मुझे भी फोन पर बात करनी है, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, तुम्हारे फोन में है, जरा मैं उनसे बात कर लूं। खलील ने बिना ज्यादा सोचे अपने जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ में थमा दिए, मैं दूध लेकर आता हूँ, और वो बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ सुल्ताना बेगम ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे अभी अभी वो किसी बड़े खतरे से बचकर निकली हो। उसकी नज़र दरवाजे पर ही टिकी थी क्योंकि उसे पता था ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर जहां सुल्ताना बेगम अपने घर में हालात संभालने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अरमान की सगाई पूरे शोर शराबे और रौनक के साथ चल रही थी। महिलाओं का एक ग्रुप खड़ा बातें कर रहा था, तभी उनमें से एक औरत रेहाना बेगम के पास आई और बोली, आज रेहान दिखाई नहीं दे रहा और ना ही तुम्हारी बहू। रेहाना कुछ कहती उससे पहले ही पास खड़ी माहिरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रेहान और सादिया दोनों US गए हैं वेकेशन पर, वरना तो आपकी फैमिली इतनी एकजुट है कि कोई भी फंक्शन मिस नहीं करता। माहिरा ने उसकी बात को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वो औरत रुकी नहीं। औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ तंज कसा। अच्छा, वो थोड़ा करीब आकर बोली, तुम्हारा शहर वो दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या फैमिली का हिस्सा नहीं माना जाता? उसकी बात सीधी नहीं थी, लेकिन इशारा साफ था, वो फैजान की बात कर रही थी। ये सुनते ही माहिरा का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में गुस्सा और तकलीफ दोनों साफ दिखने लगे। माहिरा ने खुद को संभाला, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग खाना खाकर जाइएगा और मीठा जरूर लीजिएगा। उसकी आवाज में अब ठंडापन था। इतना कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन उसके कदमों की तेजी बता रही थी वो अंदर से कितना उखड़ चुकी थी। सगाई का माहौल पूरी रौनक पर था, लेकिन अरमान की मुस्कान सिर्फ दिखावे की थी। वो हर रस्म निभा रहा था, मगर किसी भी चीज में उसका दिल नहीं लग रहा था। ये सगाई ही वो अपनी माँ के लिए कर रहा था, वरना उसे रिदा जा सगाई से किसी में इंटरेस्ट नहीं था। उधर माहिरा रिदा को लेकर अंदर चली गई और फिर दोनों साथ में लॉन की तरफ निकल आईं। स्टेज से ये सब देखते हुए रेहाना बेगम ने हल्के तंज में जुबैदा बेगम से कहा, माहिरा क्या उसे घर पर छोड़कर आई है? रिदा के साथ अरमान को होना चाहिए और वो हर जगह उसी के साथ घूम रही है। जुबैदा बेगम ने बस एक नज़र उनकी तरफ देखा, लेकिन क्या जवाब देती, क्योंकि अरमान सगाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, माहिरा को सब संभालना पड़ रहा था। तभी माहौल को संभालते हुए फरीद खान ने ऊंची आवाज़ में कहा, चलो अब रिंग भी पहना दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आफताब ने हामी भरी। सबकी नज़रें अब स्टेज पर टिक गईं। रिदा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन अरमान, जैसे ही उसने रिंग की तरफ देखा, उसकी आंखों के सामने अचानक नूर का चेहरा आ गया। एक पल के लिए वो कहीं खो गया, फिर अचानक उसने रिंग उठाई और अपनी माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मॉम रिंग आप पहनाइए। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। ये क्या कह रही हो तुम, रिंग तो अरमान को पहनानी चाहिए, रेहाना बेगम से रहा नहीं गया। अरमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जानता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी की शुरुआत मॉम के हाथों से ही होगी। ये सुनकर जुबैदा बेगम कुछ पल के लिए उसे देखती रह गईं। उनकी आंखों में गर्व भी था और एक अनकही बेचैनी भी। उन्होंने धीरे से रिंग ली और रिदा की उंगली में पहना दी। रिदा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अरमान के चेहरे की उदासी उसके दिल तक उतर गई थी। चारों तरफ तालियां गूंज थी,
लोग मुस्कुराते हुए मुबारकबाद देने लगे, लेकिन उस भीड़ में भी कुछ दिल ऐसे थे जो आज भी खाली थे।